अरे हमको समय कहाँ है, मैं तो आज रास्ते से निकल आया इसलिए, नहीं तो हमको समय नहीं है यहाँ पर, मैं ब्राह्मण का लड़का, मैं ये सब काम नहीं करता, आज आपके कहने से वृद्ध है महिला इसलिए मैंने करा दिया। यदि वो कहती जे कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरों की हम पूजा नहीं करेंगे तो इष्ट लाभ होता। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, प्राज्ञ उसको कहते हैं अपने कार्य को उद्धार करना, मैं कह रहा हूँ ऐसे अयोध्यापति नहीं कह करके जाएगा वहां तो काम नहीं बनेगा, इसलिए मैं कहता रहा हूँ वहां पर ऐसे कर करके जाओ, नहीं तो रास्ता ही नहीं मिले, बंदर लोग तुमको जाने नहीं देंगे, यहाँ पर वैसे ही जाना पड़ेगा। अब यह अयोध्या के निकट बतलाया ना, निकट मैंने रामचंद्र जी दंडकारण्य और ये सब चित्रकूट में कैसे गए, पैदल गए, जूता छाता लिया, जूता छाता, इसलिए द्वारका से वैकुंठ से द्वारका दूर है किंतु अयोध्या से कुछ निकट है, उतनी दूर नहीं है, दूर वहां से भी बहुत दूर है किंतु दूर होने पर भी कुछ साम्यता है। वो कह रहे हैं तुम सुख से द्वारका यहां से पहुंच जाएगा क्योंकि तुम्हारे इष्ट देव में कुछ साम्य है, वो भी नरावतार हैं, नर लीला कर रहे हैं रामचंद्र, और कृष्ण भी दुभोज हैं, और तुम्हारे इष्ट ये भी तो भी बिना जूता के भी राम सब जगह दंडकारण्य चारों तरफ में, बल्कि ये लिखा है जो लोग दुर्वा दल श्याम राम को दंडकारण्य में घूमते हुए कांटे से विद्ध होने पर निकाल देने के पर जो रक्त गिर रहा चरणों से, ऐसे रामचंद्र जी का जो ध्यान करेंगे भव सागर को पार होकर के अयोध्या में राम को चंद्र को सहज रूप में प्राप्त हो जाए। क्यों, इसलिए कहा रामचंद्र जी के पैरों में जब कांटा घुसेगा तो उसके दिल में दर्द होगा ना, दर्द किसको होगा, जिसको प्रीति होती है ना? ऐसे हम लोग हैं और मान लिया कि कुछ कष्ट हो गया ना, तो जिसको हमारे प्रति प्रीति है वो उसका एकदम निकट में भाव आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, बल्कि सुख का भाव याद नहीं रहेगा किंतु ये चीजें याद रहेंगी। रामचंद्र जी सीता जी के पैरों में कांटा गड़ गया, सीता जी उठ करके और झट बैठ गई और पैर को ऐसे दे और कांटा चुभ गया है बहुत, रामचंद्र जी झट बैठ गए और सीता जी का पैर को अपने आंखों में ले लिए और पैरों पर अपने जंघों पर गोदी में उनका चरण ले लिया, आज तक कभी नहीं किया था ना? और उसको पकड़ करके खींचा उसको और रक्त जब गिरने लगा तो अपना दुपट्टा फाड़ दिया और वहां रख करके फिर उसी के पास, ये जीवन में सीता जी कभी भूलेंगी या उनका कोई भक्त भूलेगा नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि उनके चरणों में जब रक्त गिरा जब कांटा किया, और ऐसे रामचंद्र जी का जो ध्यान कर रहे हैं बन बन फिरत रघुराई और उनका ये ऐसी स्थिति में कोई ध्यान करे तो झट बहुत सागर को पास करके उनको पास, ऐसे ही कृष्ण गोचारण में गए होंगे उनको कभी कांटा नहीं गिर लगा रहा होगा और सखा लोग निकाली भी नहीं, और जब थक जाते होंगे और मिलन प्रेयसियों के साथ में हुआ होगा तो वो नहीं कहेंगी, वो तो कहती हैं कलिलता मन कांत गच्छसि, वो श्लोक क्या है, चलति यद ब्रजा चारयन् पशुं नलिन सुंदरं नाथ देव पदं श्लतलान कोई सिद्धिती की ना कलिलतान मना
कांतगन
मन के साथ उनका विवाद होता है। मन कहता है अरे क्यों तुम उनके लिए रो रही हो? तो हमारे कांत वन प्रदेश में गए होंगे गैया चराने के लिए और पत्थर के टुकड़े नोकीले उनके पैरों में नहीं लगते हैं, कांटे लगते होंगे, इसलिए मन बड़ा दुखी होता है। दुखी होने की क्या बात है, सब जगह काटने और पत्थर के टुकड़े हैं, सब सीधे रास्ते नहीं हैं, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तो गोपियां कहती हैं अरे भाई गायें तो सर्वत्र घूमती हैं, कांटों कुछ और ऊपर नीचे में जाती हैं, कांटे कुछ में अधिक जाती हैं, तो उनके पीछे पीछे जाने में उनको जरूर कष्ट होता है। अरे मूर्खाओं, अरे उनको भगवान ने नेत्र नहीं दिए, देख करके नहीं चलते होंगे सीधे रास्ते से, कांटे कुछ में और उनमें जाने की क्या जरूरत है? अरे गैया जब दौड़ करके भागेंगी तो उनको रोकने के लिए क्या वो देख करके जाएंगे यहाँ कांटा कुछ उनके इधर उधर निकल जाएंगे, सब ही तो कांटा कुछ होंगे। इसी तरह से मन के साथ में उनका विवाद हो रहा, कली लता मना कांत गत से ओ जब बन में जाते हैं कैसे दुखिया। तो यही कह रहे हैं दोनों की लीलाएं कुछ सम नव लीलावत हैं, इसलिए अयोध्या से कुछ निकट है बैकुंठ, और अयोध्या निकट है कहां से बैकुंठ से ना? यहां पर कह रहे हैं जैसे रघुनाथ रूपस्य भगवतो अनुग्रह विशेषेण एव श्री गोपाल देव भगवान प्राप्यते। आप तो समझ रहे हो, देखो ये सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं उनके शब्दों को समझो। श्री रघुनाथ रूपस्य, रघुनाथ जी का रूप है, उस रूप के जो भगवान हैं अर्थात जो रामचंद्र जी हैं, अनुग्रह विशेष है नहीं वह, अर्थात रामचंद्र जी के विशेष अनुग्रह से ही श्री गोपाल देवो भगवान प्राप्त थे। भगवान जो तुम्हारे इष्ट देव जो गोपाल हैं वो सहज रूप में प्राप्त होंगे। जैसे शिवस्य अनुग्रह विशेषेण एव यथा विष्णु इति, जिस प्रकार से शंकर जी की कृपा से विष्णु की प्राप्ति होती है उसी तरह से रघुनाथ जी की कृपा से ही द्वारकाधीश की प्राप्ति है। क्यों? ठीक बैकुंठ के नीचे शिवलोक, इसलिए शिव जी बतला करके कृपा करके उसको उपाय बतला देंगे, अभी यहाँ से चले जाओ वृंदावन में और उपासना करते, तब फिर यहाँ नहीं, यहाँ से सीधा रास्ता वहाँ नहीं है, सीधा रास्ता वहाँ वृंदावन से है ना? ये शंकर जी बतलाएंगे, दूसरा नहीं बतला सकता। इसलिए शंकर जी की कृपा से जैसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ऐसे ही रामचंद्र जी की कृपा से ही कैसे, यदि कोई जानता है इस विषय को, वह दंडका ऋषि के आश्रम के ऋषि लोग कितने 7,000 ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे और करोड़ों वर्षों से कर रहे थे, किंतु गोपाल मंत्र की सिद्धि नहीं हुई। जब रामचंद्र जी दंडकारण्य में आए उनको रूप को देखा, देख करके आकर्षित हो गए और कहा ये तो मालूम होता जो वही इतना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मन ही मन में उनसे प्रार्थना की, प्रभु हम कृष्ण को कब मिलेंगे गोपी रूप से? तो रामचंद्र जी की कृपा हुई, उन्होंने कहा अच्छा ठीक, ये जो अगला आने वाला है ना द्वापर युग, उसमें मैं खुद ही राम कृष्ण बनूंगा और उस समय तुम सब आकर के गोपी के घर में जन्म लेगी और हमको प्राप्त सहज हो गया ना। दूसरी बात, जनक की पुर की जितनी राजकुमारियां थी राम के रूप को देख करके लुप्त हो गई और भी प्रिंसेस ऑफ जनकपुर जनकपुरी वेर सो मच अट्रैक्टेड विद दिस, रागात्मक भक्तों के अनुगमन में डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगा, जरूरत नहीं है अयोध्या और बैकुंठ और शंकर लोग जाने की कहीं जरूरत नहीं है, यही वृंदावन से डायरेक्ट उस इसी वृंदावन में ही कृष्ण को पा करके और उनके साथ में फिर वो जाएगा। किंतु यहाँ पर क्रम मार्ग का विचार हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को जैसे माता पिता भाई बंधु सब परिवार हैं, ऐसे कृष्ण के भी परिवार हैं वहां द्वारकापुरी में। जैसे उनको परिवार नहीं है नारायण का, उनका परिवार बस एक ही परिवार है, कोई पुत्र नहीं। नारायण का ससुर कौन है? उनकी सास कौन है? कोई द फादर ऑफ राम नारायण नन, कोई उनका ससुर सास नहीं। उनका पिता कौन है? बेजन्मा है नारायण, बेजन्मा है, नो फादर नो मदर। उनका मित्र कौन है? कोई मित्र नहीं, सब दास है। किंतु अयोध्या में कुछ रामचंद्र जी के जैसे ये सब परिवार हैं, उनका भी परिवार है, किंतु कृष्ण का परिवार इनको दो पुत्र केवल है। और कृष्ण के कितने पुत्र हैं? एक एक इस पत्नियों के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, या कितनी कन्या?
एक एक कन्या
तो 16,000 से गुणा कर दीजिए तो कितना पुत्र? 16,000। बड़ा विराट परिवार है। उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए 3 कोटी मास्टरों की जरूरत पड़ती थी, इतना बड़ा भारी परिवार। इसलिए अयोध्या से कुछ ये निकल पड़ता है, तभी अयोध्या से दूर है। तो कहते हैं कि बुद्धिमान कौन है? हम जो कहते हैं उसको पालन करो। अभी राम राम कह करके जाओ, जैसे वहां पर उदाहरण में हमने इसको स्पष्ट करने के लिए राधा जी की सूर्य पूजा और चंद्रावली की दुर्गा पूजा और गोपियों का पतियों से झूठ बोलना है और सब जो हैं वो किस लिए? अपने इष्ट देव की प्राप्ति और कृष्ण की प्राप्ति है, इसलिए वहां पर कोई दोष नहीं है। और अपने सुख के लिए यदि हम करें तब तो बहुत बड़ा अपने लिए मतलब, अपने सुख के लिए प्रसन्नता, तब तो वो काम हो जाएगा, भक्ति विरोधी हो जाएगा, तब तो वो मूर्ख हो जाएगा। इसलिए मूर्खता मत कर, हम जो कहते हैं वही वही करो। नहीं? एक बात और समझना, संकीर्तन तस्य तथोदितं प्रभु कुर्वन् गतस्तत्र निज प्रियेश्वरं श्रीकृष्णचंद्रं यदुभिवृतं चिरं दीक्षसि द्रक्षसि तं मनः। और जब अयोध्या पार कर लेना तब तो फिर कृष्ण का संकीर्तन जैसा मैंने हे गोपाल इत्यादि ये सब। अयोध्या तक जाते हुए तुम भीतर में अपनी निष्ठा ठीक रखना अपने इष्ट देव के प्रति, किंतु ऊपर से ये कर ले, उसमें कोई बुराई नहीं है। विशेष करके एक बात तुमको बतलाता हूँ, ये खूब अच्छी तरह से समझना, यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त। एक बात ये, अपने गुरु जी के पास में एक रोज कुत्ता आकर के बैठता है, हटाने से भी नहीं हटता। और गुरु जी बड़े प्यार से प्रसाद पाने के बाद उसको रोटी का अपना जूठा टुकड़ा डाल देते हैं और वो पूछ हिलाता हुआ आकर के ले करके फिर वो। और गुरु जी के पास में किसी चोर चोटे बदमाश को नहीं आने देता ना? तो उनका जो अपना सेवक है उस कुत्ते को प्यार करेगा कि नहीं जो गुरु सेवक है? हाँ? उसको बड़ा प्यार करेगा। अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड, इंटरेस्टिंग थिंग। और गुरु जी की सेवा के लिए अपने प्राण को भी दे देने के लिए सब समय प्रस्तुत होता है, तो दूसरा सेवक उसको दे करके प्रसन्न होना चाहिए। यदि प्रसन्न नहीं होता है तो क्या समझो? कपटता है, द्वेष हिंसा है। ऐसा आदमी बैकुंठ में कि आप कभी उसको भक्ति नहीं हो सकते। इसलिए अपने इष्ट देव के प्रति यदि कोई थोड़ा सा भी आदर करता है उसको बहुत आदर करना चाहिए। यह भक्ति का लक्षण है। आ रहा है समझ में? यदि कोई व्यक्ति हमारे इष्ट देव का आदर करता है ने? तो गुरु जी कहते थे जे इसको जमाई समझो, जमाई बाबू जैसा आदर करो ने? तो अपने इष्ट देव की प्राप्ति, और यदि इष्ट देव की प्राप्ति में कोई बाधक है तो उसे कोई संबंध मत रखो ने? तो वही ये कह रहे हैं अपने इष्ट देव के प्रति अपने इष्ट देव की प्राप्ति हो रही हो और अपने इष्ट देव का कोई यदि आदर करता है तो क्या करो? उसका ऋणी बन जाओ। ये हमारे गुरु जी को इतना प्यार करता है, हमारे इष्ट देव का इतना प्यारा है ये, और हमारे कृष्ण के लिए इतना इसके हृदय में आदर है, तो उसका दासानुदास बन जाओ। यदि गुरु जी ये समझेंगे हो हम जिसको प्यार करते हैं उसको ये प्यार करता है और जिसे हमारा प्यार नहीं उसको प्यार नहीं करता, तो गुरु जी उस व्यक्ति को क्या करेंगे? सबसे अधिक प्यार करेंगे। भगवान के विषय में ही ऐसा ही समझ ठीक है। केवल एक थोड़ा सा ब्रज में कुछ उल्टी रीति दिखती है किंतु और कहीं नहीं, और वो उल्टी रीति केवल एक रस में ही है, तीन रस चार रसों में नहीं है। यदि कोई कृष्ण को जसोदा जी के सामने प्यार करे तो जसोदा जी को ईर्ष्या होगी ना? कितना प्यार होगा। इफ एनी वन लव कृष्ण बिफोर श्रीमती जसोदा देन शी विल बी वेरी सो मच ग्लैड। जसोदा जी बड़ी प्रसन्न, हमारे बेटे को ये प्रसन्न प्यार करता है। नंद बाबा के सामने कोई कृष्ण का चुंबन ले ले तो नंद बाबा को द्वेष होगा कि नहीं? बड़ा आनंद होगा। कृष्ण के भक्तों को वैसे ही कृष्ण की कोई सेवा करता है तो उनका ऋणी बन जाता है। केवल मधुर रस एक है, उसमें कुछ विपरीत सा दिखता है। यदि राधा जी ने देख लिया ये कृष्ण को अधिक प्यार कर रही है चंद्रावली आ सकती तो क्या कर रही? उसके पास में मत जाने पाए, ये कुछ ऐसी व्यवस्था करो। किंतु वहां पर प्रेम की पराकाष्ठा है, इसको समझना दूसरों के लिए बड़ा भारी है। इसलिए चंद्रावली को इतना प्राणों से भी अधिक आदर करते हैं, और वो चंद्रावली ही है राधिका जी, दूसरी कोई नहीं है। इस चीज को समझने के लिए विशेष बुद्धि चाहिए, इसलिए इस नियम का व्यतिक्रम वहां पर भी नहीं हुआ। इसलिए ये इनके लिए परामर्श दे रहे हैं। यदि तुम यहां देखो जिससे कि हमारे प्रभु इष्ट देव की प्रीति हो रही है तो उसके प्रति तुम कृतज्ञ बनो। कैसे? राम के पास में जाओगे तो देखोगे वहां पर जामवान जी बैठे होंगे ना? जामवान तो फलू नहीं है, जो उनके मंत्री थे जामवान सर, भल्लू थे ना, भल्लू थे, और उनके प्रधानमंत्री थे और उनसे पूछ करके कोई काम करते थे। किंतु कृष्ण लीला में ये कौन है? कृष्ण के क्या है?
ससुर।
कृष्ण के ससुर बन गए, इसलिए ये तुम्हारी सहायता करनी है। हनुमान रामचंद्र जी के सेवक हैं और ये हनुमान कृष्ण के साथ में अर्जुन के रथ के ऊपर में बैठे हुए हैं और वृंदावन में गोपीश्वर बन करके घूमता टांग करके यहाँ पर हैं। ये तुम्हारी, ये हनुमान भी तुम्हारी से कुछ सहायता कर सकते हैं, इन लोगों से तुम्हारी सहायता मिलेगी। इसलिए पहले तुम जाओ तुम वहां और अपना काम निकाल करके फिर अयोध्या ले जाओ ना, इसलिए अयोध्या जाना तुम्हारा अच्छा है। और इष्ट देव तुम्हारे इष्ट देव के प्रति इनकी जो निष्ठा है ये तुम्हारे लिए सहायक होगी, इसलिए इनके प्रति तुम ऋणी रहना, इनसे विरोध मत करना। अनज्ञान इसलिए बड़ी बड़ी गुप्त रहस्य की बातें सनातन गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं। ये सब टीकाओं में समझना भी बड़ा टेढ़ी खीर है। एक तो साधारण श्लोकों को समझना, जो श्लोक है उनको तो समझना ही नहीं है, आप टीकाएं जिसको सरल करके लिखे वो उसको भी समझना। उन्होंने उदाहरण नहीं दिया है कोई, केवल लिख भर दिया है, उसको समझना बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए इन चीजों को समझ बूझ करके ऐसे ही साधन करने पर फिर कल क्या होगा, फिर कल का बात आज नहीं करता।
जनक बुद्धि स्त्रियां गोपियां हुई वो कैसे हुई?
यदि कोई सिद्धांत नहीं समझेगा तो केवल कहानी हिस्सा हो जाएगा। बहुत इधर उधर क्या पीछे ठाकुर जी के तरफ में पीठ मत या तो इधर पता चला छे गर्म लग रही है
गर्मी गलती से
तो बिना सिद्धांत के केवल कहानी खिस्सा हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत रामायण वेद उपनिषद शास्त्र सिद्धांतों के ऊपर में प्रतिष्ठित है। जो लोग केवल कहानी किस्सा जानते हैं राम का या कृष्ण का और सिद्धांत ज्ञान नहीं है उनके समझ में कुछ नहीं, कल ऊपर ही में रह जाएंगे कुल विचार। अब जो लोग सिद्धांत में प्रवेश करेगा उसके निगुण भावों को वो लोग समझ करके साधन भजन करके कुछ उपलब्धि कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसलिए पहले ये सिद्धांत को बतला करके फिर पीछे से क्या हुआ ये बतला। महाभारत ऊपर से देखने से केवल तामसिक लोगों का युद्ध है, युद्ध मारामारी चोरी बरजोरी यही सब, किंतु भीतर से प्रवेश करेंगे देखेंगे गीता जैसा रत्न शांति पर्व का भक्ति पर्व का ये सब बहुत सी अच्छी चीजें सिद्धांत। आवरण के भेद से कपड़े के भेद से हो सकता है कि हम लोग जो कुछ पहने हुए हैं कपड़े इनमें भेद, वैसे ही आवरण के भेद से उनमें कुछ अंतर हो सकता है, किंतु एक शाश्वत अजर अमर दिव्य आत्मवस्तु है उसमें एक। समस्त भागवत पुराण शास्त्र गीता भागवत पुराण जितने भी हैं भागवत वही एक ही चीज की बात है, भीतर में एक है और ऊपर से वो एक क्या कहते हैं ना ओल्ड इन न्यू बोटल इन न्यू बोटल हाँ वाइन इन वाइन तो वही है शराब तो वही है किंतु बोतल नया और डिजाइन का बना दिया है। उसी तरह से एक तत्व तो वही भगवत भक्ति यही एक परम तत्व है, कृष्ण ही परम तत्व है, ये सब शास्त्रों का था, किंतु ऊपर से किसी को किसी रंग में किसी को किसी रंग में इस पूर्णता ये सब एक सफेद कपड़े का ब्रह्मचारी और सफेद कपड़े का परमहंस वेश और लाल कपड़े का ब्रह्मचारी और सन्यासी। कपड़े से तो भेद है वेश से भेद है, किंतु उनके ऊपर अंदर में जो तत्वज्ञ जो हो तत्विक जो जो सभी हों भक्ति के रसिक हों तत्वज्ञ हों तब उनमें अंतर में क्या भेद है? अंतर में क्या एक ही वस्तु है। राय रामानंद सफेद कपड़े विग्रह स्वरूप दामोदर सन्यासी वेश और लाल कपड़े दोनों का भक्ति का विचार एक अंश है। ऐसे ही सब शास्त्रों में ऊपर से तो देखता पड़ता है ये आवरण कुछ अलग अलग भीतर में वस्तु एक उसको किसी शब्दों में कहीं किसी शब्दों में कहीं नहीं कहा। असल में ये समझना है कहानी नहीं समझनी है। उसके समझ में यदि वो तत्व आ गया है तो वो अपने आप कहानी गढ़ लेगा कहानी भी गढ़ लेगा। आप जहाँ कहीं शास्त्र में बातें हैं उसके उदाहरणों को वो ठीक ठीक रूप में अन्यथा समझेगा ही नहीं। कल जो बतलाया था हमने जो उन्होंने कहा कि द्वारका दूर है और अयोध्या निकट है इसका तात्पर्य बतलाया और मार्ग जाने का द्वारका किंतु एक ही मार्ग है। भक्ति की लता इस पृथ्वी लोक से निकलकर ब्रह्मांड को भेद कर विद्या को भेद कर सिद्ध लोक पार कर सदाशिव लोक को भी पार कर गई वैकुंठ अयोध्या गोलोक को भेद कर गई गोलोक में द्वारका मथुरा को भी पार कर गई और अंत में ब्रजलोक को भक्ति एक ही रही ने किंतु उसके उसकी जो लता है कुछ पृथ्वी लोक में है कुछ ब्रह्मांड में है कुछ विद्या के ऊपर में है कुछ वैकुंठ में भी है और उसके ऊपर में गुरु वृंदावन में जाकर के फलना फूलना और बढ़ना था मोटिया उसमें प्रेम फल लगा फल कहीं नहीं लगा फल वहीं लगा किंतु लता एक ही है। ऐसे ये अयोध्या से होकर के ये लता जा रही है और उसी को अवलंबन करके हमारे ये भोग कुमार जी चल रहे हैं। तो कल अयोध्या की निकटता द्वारकापुरी की दूरी और एक चीज विशेष बतला है एकांतिकता की हानि कैसे और कब होती है। उद्देश्य यदि ठीक हो उद्देश्य हम ठीक रखते हैं और किसी की पूजा ऊपरी रूप से कर देते हैं प्रतिष्ठा दे देते हैं एकांतिकता की हानि नहीं होती किंतु तत्वतः चीज को नहीं समझते हैं और फिर उनको जो आदर देते हैं उसमें एकांतिकता नष्ट हो जाती है। यदि शंकर को भगवान का दास समझा जाए और समझ करके इनके द्वारा भगवान की प्रीति मिल सकती है हमको तो यहाँ पर इनकी पूजा करना वो एकांतिकता की हानि नहीं है ना? किंतु यदि हम शंकर जी को समझें जैसे ये स्वयं ईश्वर हैं और इनकी आराधना सबसे श्रेष्ठ है और कृष्ण भी भगवान हैं वो भी उनकी पूजा भी सर्वश्रेष्ठ है ना? तब फिर दोनों की पूजा जो करेंगे उसमें एकांतिकता की हानि है। आ रहा है समझ में? यदि किसी कारण से हमको पता मिल जाए तो भाई गणेश की सेवा करने से भी राधा जी की कृपा मिल सकती है नहीं करेंगे हम अभी नहीं करेंगे तो संदेह की बात हमारे अंदर संदेह है। यदि एक तृण की सेवा करने से और तृण प्रसन्न होकर के हमको राधा जी का दास्य दे दे तो हमको तृण ही की पूजा करते हैं। हमको राधा जी का मिलना अभिष्ट है किसी की पूजा अभिष्ट नहीं है हमको उनकी कृपा चाहिए राधा जी यदि पुलिंदियों की पूजा करने से, पुलिंदी जानते हैं, पुलिंदियों की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से राधा जी की कृपा हो जाए, तो पुलिंदी की हम 100 बार आराधना करेंगे। पुलिंदी माने गोवर्धन की पुलिंदी है, ये सब गोविंद लीलामृत की बातें हैं। अर्थात हमको किस चीज की जरूरत है, ये चीज देखना, हमारा अभीष्ट कैसे हो। यदि एक नौकर की भी सेवा करने से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छा तो भाई तुम तो मिला तो दो, तुम जो कहेगो तुमको खुश कर देंगे। हमको मिलने की जरूरत है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम यदि सीतापति कह देगा तो तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम यदि रघुनाथ जय श्री राम की जय ये यदि कीर्तन करेगा तो तुम्हारा वो एक निष्ठता है, अनन्यता नष्ट नहीं होगी। क्यों, तुम किस लिए कर रहे हो? तुम्हारे इष्ट देव मदन गोपाल के लिए सीधा रास्ता वहां से मिल जाएगा, वो रास्ता छोड़ देंगे, आने तो वो बंदर नहीं जाने देंगे उधर,